हरे कृष्णा।
आप
सब भक्तों का आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में आज विशेष वक्ता उपस्थित हैं, हिज ग्रेस प्रह्लादानंद प्रभु। प्रभु जी लगभग 2 साल पहले आप आए थे यहाँ पे और जिन्हें यहाँ पे क्लास दी थी और लंबे अरसे के बाद आए हैं। इज बेस्ड इन बॉम्बे, बॉम्बे में ये बेस्ड हैं और ऐसे पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, प्रचार करते हैं। बहुत अनुभवी और सीनियर भक्त हैं। मायापुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में फैकल्टी भी है, वहाँ ट्रेनिंग और एजुकेशन भी देते हैं। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। कृपया ध्यानपूर्वक इनके मुखारविंद से भागवत कथा सुने, अपने मोबाइल फोन साइलेंट या स्विच ऑफ करते हैं। हरे कृष्ण।
धन्यवाद, आपने कह दिया कि मोबाइल फोन बंद रखिए सर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 3 अध्याय 9 अध्याय 9 श्लोक संख्या 4-3। अध्याय का नाम है मोहिनी मुक्ति के रूप में भगवान का अवतार। कात्वं कञ्जपलाशाखी कुतो वाकिञ्च कीर्षसि कस्यासि वदवामोरु मथ्नतीव मनांसिनः। कात्वं कञ्जपलाशाखी तो बाकिं चिकीर्षसि कस्यासि वदो वामुरु मथ्नतीव मनांसि च। ओके, सो मैं पहले वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ूंगा, फिर उसका जो पहले एक दो श्लोक है उसका श्लोक और अनुवाद खुद पढ़ लूंगा। अभी हम लोग दोहराएंगे इसी श्लोक का शब्दानुवाद। का कौन तुम हो कंजपला सखी कमल की पखड़ियों जैसी आंखों वाली कुतः कहाँ से बा अथवा किम चिकीर्षसि तुम किसी प्रयोजन से यहाँ आई हो। कस्य किसकी असि हो बदा कृपया हमसे कहो। वामरु हे अद्वितीय सुंदर जांघों वाली मथनती उद्वेलित करती हुई ईवा इस प्रकार मनांसी मनों को नाहा हमारे। श्री सुकोवाच ते नुन्यन्नत सुरा पात्रं हरंत स्तित्त सरुहदा हिपंत तस्य धर्माणं आयंति तदृश स्त्रियं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा तत्पश्चात असुर एक दूसरे के शत्रु बन गए उन्होंने अमृत पात्र को फेंकते और छीनते हुए अपनी मैत्री संबंध तोड़ लिए। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदरी तरुणी उनकी ओर पड़ी आ रही है। अहो रूपम अहो धामम अहो अस्य वनवंगयः इति ते ताम अभिद्रुत्य पप्रच्छृजात हृत्सया। इस सुंदरी को देखकर असुरों ने कहा, अहो इसका सौंदर्य कितना आश्चर्यजनक है, इसके शरीर की कांति कितनी अद्भुत है और इसकी तरुण अवस्था का सौंदर्य कितना उत्कृष्ट है। इसी तरह कहते हुए वे उसका भोग करने की काम वासना से भरे हुए तेजी से उसके पास पहुंच गए और उससे तरह तरह से प्रश्न पूछने लगे। आज का श्लोक का अनुवाद, हे अद्भुत सुंदरी वाला, तुम्हारी आंखों इतनी सुंदर है कि वे कमल पुष्प की पंखड़ियों जैसी लगती है। तुम आखिर हो कौन? तुम कहां से आई हो? यहां आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है और तुम किसी की हो? हे अद्वितीय सुंदर जांघों वाली, हमारे मन तुम्हारे दर्शन मात्र से ही विचलित हो रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। असुर ने उस अद्वितीय सुंदरी से पूछा, तुम किसकी हो? स्त्री अपने विवाह के पूर्व पिता की ही होती है, विवाह के बाद पति की होती है और बुढ़ापे में अपने बड़े पुत्रों की होती है। इसी प्रश्न के संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि तुम किसकी हो? प्रश्न का अर्थ है, तुम किसकी पुत्री हो? क्योंकि असुरगण यह समझ पाए थे कि वह सुंदरी अभी तक अविवाहित है, अतः उनमें से हर एक उससे विवाह करना चाहता था। इसी तरह उन्होंने पूछा, तुम किसकी क्या हो? पुत्री हो। स्थित प्रज्ञा से का भाषा समाधिस्तस्य केशव। वहां पर दो तीन प्रश्न आता है, ठीक है। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं शीशोपदान्तकं वन्दयं श्रीगुरु श्रीयुक्तापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्थजातं हवन रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सर्वनरिता श्री विशाखान्ता। हे कृष्णकरुणा बन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते ताप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसृते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। त्वं पञ्जपलाशाखी कुतो वा किं चिकीर्षसि कस्यासि वद वामोरु मथ्नतीव मनांसिनः। हे अद्भुत सुंदरी बला, तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर है कि वे कमल पुष्प की पंखड़ियों जैसी लगती है। तुम आखिर हो कौन? तुम कहां से आई हो? यहां आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है और तुम किसी की हो? हे अद्वितीय सुंदर जांघ वाली, हमारे मन तुम्हारे दर्शन मात्र से ही विचलित हो रहे हैं। इसी श्लोक में आप लोगों को पता होगा, एक ऐसा एक्सपीरियंस को हम लोगों को अनुभव हो रहा है, प्राय लगभग आप सब लोग अपने जीवन में अनुभव कर चुके होंगे, मैं भी अथवा और जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, कैसे मन की दशा होती है उसके ऊपर। यहाँ पर असुर लोग, देवता लोग, देवता लोग तो इतना नहीं, लेकिन असुर लोग अपने मन की दशा बताते हैं क्या हो रहा है उनके मन में, गुणों का प्रभाव हो करके, अथवा भगवान जैसे रूप, भगवान कृष्ण की रूप तो ऐसे ही बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान अगर स्त्री बन जाते हैं, मोहिनी बन जाते हैं, तो फिर वो तो और भी बहुत सुंदर दिखाई पड़ेगा, स्वाभाविक है। भगवान में षडैश्वर्य से पूर्ण है, वो पुरुष बने या स्त्री बने, ऐसे ही बहुत सुंदर सबको दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ असुरों की तो दशा ऐसा हुआ था, आप लोगों को पता है, भगवान शंकर जी की मोहिनी रूप देख करके भी उनका मन विचलित हुआ था। भगवान शंकर भी भगवान के मोहिनी अवतार में इतना आकृष्ट हो गए थे उनके रूपों को देख करके। पार्वती इतने दिन तक तपस्या करती रही, भगवान इतना कभी मोहित नहीं हुए, उनके डिवोशनल सर्विस में आकृष्ट होकर के उनको विवाह किए थे, उनके रूप में आकृष्ट होकर के नहीं, लेकिन मोहिनी के रूप में भगवान शंकर जी बहुत व्यथित हुए थे, बहुत क्या हुए थे ना, आकर्षित हुए थे। तो रूप ऐसा था, भगवान शंकर ने आकर के कहा, प्रभु जी हमें आपका मोहिनी अवतार थोड़ा दिखाइए। भगवान मना कर रहे थे, क्यों देखना चाहते हैं, तो नहीं थोड़ा दिखाए, हमारे मन की इच्छा है। तो मन की इच्छा पूर्ति करने के बाद क्या हुआ, जो हुआ आप लोगों को पता है। तो चलिए थोड़ा शब्दों का पहले अन्वय कर लेते हैं, फिर उसके बाद। कंज पलासा की, कमल की पंखड़ियों जैसी आंखों वाले। कंज का अर्थ जानते हैं, कंज का अर्थ क्या है? कंज का अर्थ बता रहे हैं कि सॉफ्ट। अब बताइए। हाँ, उन्होंने एक बात बताया, पद्म योनि। कंज का अर्थ है जल, जल से उत्पन्न, कीचड़ से उत्पन्न, तो उन्होंने इनडायरेक्टली बताया, जल से उत्पन्न जो होते हैं, पंकज, जल से अनेक चीज उत्पन्न होते हैं, लेकिन कंज का अर्थ है यहां पर जल डायरेक्ट। कंज का पांच अर्थ है, एक होता है साक्षात पद्म, एक होता है पद्म योनि, पद्म योनि ब्रह्मा है जिनका योनि पद्म है, पद्म से जो आविर्भूत है, स्वयं उनको कहा जाता है, लेकिन वो पद्म योनि है, पद्म से वो प्रकट हुए अथवा उनको नाम है पद्म योनि। तो कंज का अर्थ है जल है, कंज का मैं लिख करके रखा हूँ, मेरा याद नहीं आ रहा है ठीक से, देख करके पढ़ता हूँ। और कंज का दो अर्थ है, और कंज का और एक अर्थ चंद्र है, चंद्रमा। कंज का अर्थ है कि है अमृत, यहां पर अमृत मंथन की अभी लीला चल रही है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये शब्दों का जो समागम कर रहे हैं, व्यास जी हो अथवा सुखदेव गोस्वामी हो, तो अच्छा रहता है, अमृत मंथन के साथ अमृत शब्द का सब्स्टिट्यूट अथवा उसका जो वोकैबुलरी जितना है वो सब एक साथ चलना चाहिए। कंज का अर्थ है पद्म, कंज का अर्थ है पद्म योनि अमृत, कंज का और एक अर्थ है केस, कंज का अर्थ है चंद्रमा, ये पांच कंज का वास्तविक अर्थ है। और ये जो संस्कृत का इसको एडजेक्टिव कहते हैं, और जैसे प्रयोजन कहा कीचड़ से उत्पन्न हो, प्रयोजन कहा जल से उत्पन्न हो, तो यहाँ जो कंज का अर्थ है जल से जो उत्पन्न हुआ है वो है क्या ना, पद्म, जल से उत्पन्न पद्म का हुआ। और कंज जो है ये कैसे हुआ है ना, कम, कम एक शब्द है, डेरिवेशन उसका ऐसा हुआ है, अर्जन धातु का मिश्रण से एक कंज बना। ये खम नहीं है, जो हमारे भगवत गीता में आता है खम मन बुद्धि रे वचा अहंकार इति अंग में भिन्न प्रकृति राष्ट्रधा। खम का अर्थ क्या है, आकाश, तो यहां पर खम नहीं, यहां पर कम है। कम का अर्थ किसको पता है, कम का अर्थ है मुख, कम का अर्थ है मुख, खम का अर्थ है आकाश। अरे तो आपको कहीं हर जगह पर भागवत में हो अथवा भगवत गीता में हो, भगवान के लोचन को, भगवान के आंखों को अगर उपमा दी जाती है कमल लोचन, पद्म लोचन और क्या शब्द है, राजीव लोचन, रवि लोचन, राइट, और क्या है, मुंडरीकाख्या, और क्या, अरविंदाख्या। लेकिन आपको ऐसा कहीं मिला जिसका रिपीटेशन हुआ है कंज पलासा की, नहीं ना, भागवत में इसका रिपीटेशन कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता। वेरी यूनिक वर्ड है, इसको याद रखना चाहिए। अगर आप लोग इसको भगवान को कभी ऐसे बुलाओगे ना, हे कंज पलासा की, क्योंकि भागवत में यूनिक डिस्क्रिप्शन, यूनिक प्रशंसा भगवान का मोहिनी का अवतार में होता है। मोहिनी का अवतार सब कृष्ण, भगवान शंकर जी का आकृष्ट किया, सारे वैष्णवों का आकृष्ट किया, असुरों का आकृष्ट किया, देवताओं का आकृष्ट किया, और भगवान मोहिनी अवतार में देवताओं को बहुत प्रिय हुए। और देवताएं कैसा है, आप जैसे हैं, क्योंकि भागवत का पहला सूक्त में वर्णन आता है कि भागवत को भी मोहिनी कहा जाता है, भागवत को भी मोहिनी कहा जाता है, जैसे यहां पर भगवान मोहिनी अवतार है, भागवत को भी मोहिनी कहा जाता है। तो भागवत को क्यों मोहिनी कहा जाता है, इसलिए कि भागवत के श्रोताओं को ये बहुत आकृष्ट है, अथवा भागवत को श्रोताओं को बहुत ही आकृष्ट करता है, इसलिए भागवत को मोहिनी कहा जाता है। जैसे भगवान ने मोहिनी अवतार अपने देवताओं को अमृत पान करवाए, ठीक वैसे ही भगवान यहाँ पर भागवत के रूप में अपने श्रोताओं को भी अमृत पान करवा रहे हैं। तो ये कंज पलासा की जो शब्द है बहुत यूनिक है, शायद ऐसा हो सकता है ये भगवान को ही पसंद हो, इसलिए इसका उच्चारण करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कंज शब्द का अर्थ जल है, तो ये कैसे बना है कंज पलाशा अखी, वास्तव में कंज शब्द से पद्म हो गया, पलाश शब्द से क्या हुआ, कुछ नहीं, तो ये समास हो जाता है, पलाश शब्द से कैसे कुछ पता नहीं चलता। तो यही ऐसे बना है कंज का जिसका अर्थ है मुख भी, तो कंज पलाश अखी। और पलाश का क्या अर्थ है, कोई बता सकते हैं, जब सन्यासी दंड पकड़ते हैं अथवा यज्ञों के विधि संस्कार होता है, किनका, छात्र ब्राह्मण लोगों के बच्चों का, तो कि पलाश से वो दंड बनाते हैं, सन्यासी दंड पकड़ते हैं ना पलाश का, और पलाश के लकड़ी से आप लोगों को पता होगा यज्ञ हवन करने वाला ये चीज बनता है। पलाश की लकड़ी से और भी कई सारा चीज होता है, तो पलाश का वृक्ष है मैंने कह दिया, पलाश का और कई सारा अर्थ है आप लोगों को पता होगा। तो यहां पर कंज और पलाश शब्द का कैसे मिश्रण होता है, मैं एक संस्कृत का शिक्षक भी हूं इसलिए आप लोगों को इस शब्दों के जाल में उलझा रहा हूं। थोड़ा संस्कृत पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है, आप पढ़ेंगे तो आगे जाकर। मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ और भागवत भी संस्कृत का क्लास है, ये शब्दों का ऐसे समागम ही हो रहा है। तो पलाश, पलाश शब्द का अर्थ क्या है, ये वास्तव में दो ही शब्द से बना है। इसका डेरिवेशन अगर आपको पता होगा इसका अर्थ क्या है, तो फिर पता होगा कि कंज पलाश अखी ये शब्द से कैसे ये अर्थ बना। कमल की पखड़ियों जैसी आंखों वाली, वो अर्थ ऐसे किया गया है। तो पलाश का अर्थ है कि व्याप्त अथवा बढ़ना, और अस धातु से जो शब्द बना है पलाश, पल और अस ये दोनों धातुओं से शब्द बना है। पल धातु से पलायति, संस्कृत में इसका शब्द भागवत में आपको मिलेगा, भाग रहा है यहां से निकल करके जा रहा है, वो धातु से बना है। तो ये क्या है ना, पल और अस धातु से मिल करके अस का अर्थ है त्यागना, अस धातु का, तो पल का अर्थ है भागना। तो पल का और एक अर्थ है पत्र है, पत्र आप कह सकते हैं, जैसे कमली की पंखड़ियों जैसी, तो पंखड़ियों को यहां पर आप कह सकते हैं कि पत्ते, कमल का पत्ता है या अथवा पंखड़ी है पत्र। तो त्यागना क्या ना, कमली की पंखड़ियों जैसी ये आंख है भगवान का। तो पल का जो और एक अर्थ है पत्र है, उसी के साथ उसका संबंध आ रहा है पंखड़ियों के साथ। तो यही है ये छोटा सा शब्द का डिस्क्रिप्शन। तो कह रहे हैं कि कंज पलाश अखी कि चिकित्सि किम करतुम तुम इच्छसि, चिकित्सि का अर्थ है किम करतुम तुम इच्छसि, तुम इच्छसि तुम क्या करने की इच्छा लेकर के यहां पर आई हो। इसलिए प्रभुपाद जी थोड़ा इसी श्लोक का भावार्थ में डिस्क्रिप्शन करके कह रहे हैं कि असुर लोग उसको क्यों पूछने लगे कि तुम कहां से आई हो, और उसके बाद एक लाइन में बता रहे हैं क्योंकि असुरगण ये समझ पाए थे कि वह सुंदरी अभी तक अविवाहित है अथवा उसका विवाह नहीं हुआ है, तो शायद असुरों के मन में यही होगा कि हम चलो उनको विवाह करना चाहते हैं, इसलिए ये लोग यही प्रश्न कर रहे हैं तुम कहां से आई हो, तुम्हारा पिता का नाम, तुम किसकी पुत्री हो। तो ये प्रश्न से क्या अर्थ होता है, तुम किसकी पुत्री हो, क्यों पूछ रहे हैं। क्योंकि जाना है पिता के पास, आपकी लड़की हमको दे दो, नहीं तो अगर दे नहीं रहे हैं तो फिर हम अपना बल प्रयोग करेंगे, जबरदस्ती छीन करके ले आएंगे, ऐसा ही हो सकता है, जिसके कारण तीन चार प्रश्न पूछ रहे हैं। उसके हिसाब से प्रभुपाद जी एक अर्थ का बताया, अभी तक अविवाहित है अतः उनमें से हर एक उससे विवाह करना चाहता था, हर एक उनसे विवाह करना चाहता था, यही श्रील प्रभुपाद जी इसी श्लोक का अर्थ बताते हैं। तो अभी हम लोग लीला पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा जो कहने का तात्पर्य यहीं पर है, अभी हम लोग आएंगे कि अभी हमारे मन में जो चल रहा है, हमारे जीवन में दैवासुर संपत्ति भाग योग में भगवान कृष्ण जो भगवत गीता में कहते हैं दो प्रकार के लोग थे, एक असुर एक देवी, देव देवताओं के गुण को दैविक गुण कहा गया, असुरों के गुण का आसुरी की गुण कहा गया है, और उत्तम गुण प्राय है। और ये दैव गुण को प्राप्त करने लगे हम लोग बहुत भजन साधन कर रहे हैं, हमारे अंदर सबमिसिवनेस, हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी, विनम्र भाव, ये सारा गुण होना चाहिए, क्योंकि ये गुण बहुत हेल्पफुल होता है भक्ति को ऊपर उठाने के लिए अथवा अपने स्वरूप को उद्घाटन करने के लिए, अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। इसलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए हम सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पर, हमारा ही प्रयोजन है। अगर ये प्रयोजन हमारा पूर्ति नहीं होता है तो फिर हमारा जो डिवोशन सर्विस है, इतना रात को सुबह उठ करके टेम्पल कमांडर बुलाता है, भाई उठो उठो मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना है, मंगल आरती जाना है, हालांकि हमारा अभ्यास नहीं बना है, लेकिन फिर भी वो जा करके हेल्प करता है, उठाता है, हम लोग उठ करके जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, हमारा एक प्रकार का स्वभाव को उत्पन्न, एक प्रकार के क्या स्वभाव, एक सात्विक स्वभाव को उत्पन्न करते हैं ताकि हम लोग अपने स्वरूप में रह सके। तो ये जो सब क्रियाएं चलता है, इसका प्रयोजन एक ही है कि हम गुणातीत हो जाए और हम वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सके, भगवान के साथ नित्य संबंध को जोड़ सके। तो जब अब हमारा मन अगर इस स्थिति में हो तो हम लोग कैसे उठे इस स्थिति से, और हम हर मोमेंट में इस स्थिति में रहने की संभावना है। चलो प्रभुपाद जी जब अपने शिष्यों के साथ एक बार एयरपोर्ट में थे, तभी एक बार श्रील प्रभुपाद जी के सामने उनके शिष्य खड़े हैं, एक शिष्य उनका कि हैंडबैग पकड़ा हुआ है। जब हैंडबैग पकड़ा हुआ है तो फिर देख रहा है कि एक लड़की प्रभुपाद जी के सामने से, सुंदर सा लड़की, ये घटना विदेश में ही घटा, सुंदर सा लड़की प्रभुपाद जी के सामने से गुजर रही है। तो वो जो भक्त थे, ब्रह्मचारी थे, कौन थे, ब्रह्मचारी थे, जब थे प्रभुपाद जी के हैंडबैग पकड़े हुए हैं, तो फिर वो देखने लगे लड़की को, लड़की जिधर जिधर जा रहा है उनका आंख उधर उधर पूरा घूम रहा है, मतलब जैसे लग रहा है कि वो स्विच है, ये पंखा है, वो स्विच मार रहे हैं, पंखा घूम रहा है। तो लड़की जिधर जिधर घूम रहा है, इसका आंख ऐसे ही पंखे की तरह घूम रहा है। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्य की हालत को देख रहे हैं, क्या घट रहा है गुरु के सामने, किसका, शिष्य का। तो वो प्रभुपाद जी इसको देख रहे हैं, गुरु के सामने शिष्य का स्थिति क्या है। तो गुरु है इसलिए बचा लिए, नहीं तो फिर क्या होता, नहीं तो शिष्य फिर क्या होते, गुरु बन जाते अथवा और किसका शिष्य बन जाते, अपने ही गुरु को त्याग करके। आजकल के हो रहा है ना, सारे गुरु कौन है, कौन है गुरु, माताएं, बुद्धियों का गुरु माताएं सारे है। मैं कह रहा हूं आप लोग माताएं सब दुखी मत हो, घटना जो घट रहा है ऐसा मैं कह रहा हूं। तो प्रभुपाद जी देखे उनको, देख करके कहने लगे कि प्रभुपाद जी, फिर वो लड़की जो सामने से हटा गया तो फिर घूम फिर करके अपने गुरु के पास आ गए उनका आंख। तो प्रभुपाद जी देखे कि क्या देख रहे थे ना, लज्जित से मुंह नीचे करके खड़ा हो गया, कुछ कहा नहीं। तो प्रभुपाद जी कहने लगे कि अगर क्रिएशन इतना सुंदर है तो फिर क्रिएटर कितना सुंदर नहीं होगा, अर्थात मोहिनी कितना सुंदर नहीं होंगे। अगर ये सांसारिक भौतिक जगत का स्त्रियां इतना सुंदर है तो फिर भगवान कितना सुंदर नहीं होंगे। तो फिर वहां शिष्य समझ गया कि प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से इसको समस्याओं का समाधान कर दिया। परंतु वो जो स्थिति हमारे ऊपर चलती है, चाहे स्त्रियों का पुरुषों के ऊपर चले, जैसे भगवान कृष्ण के ऊपर रूप को देख करके स्त्रियों का मन भी बहुत उद्वेलित होता है इत्यादि इत्यादि, तो वैसे ही एक साधारण रूप से पुरुष स्त्री का जो आकर्षण है, आप लोगों का जब भागवत का वर्णन होगा तो फिर लिंग का प्रिजाइडिंग ट्रीटीज कौन है, पुरुषों का जो लिंग है महादेव शिव ने, नहीं नहीं प्रजापति ब्रह्मा है भाई, सृष्टि करता है वीर के रूप से। प्रश्न है प्रिजाइडिंग डिटीज मतलब लिंग का, हमारा जो परिश्रा का जो लिंग है उसका प्रिजाइडिंग डिटीज मतलब अधिदेव कौन है, वो है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी वहां पर निवास करते, भागवत में उसका वर्णन आता है छठ पुस्तक में, आप लोग देख सकते हैं ब्रह्मा जी वीर के रूप में वहाँ पर चलते हैं, रहते हैं, प्रवेश भी करते हैं, प्रजा आइडेंटिटीज उनको कहा जाता है, प्रजापति उनका नाम है। तो अब ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है, मतलब सख्यत जीवों का शरीरों का निर्माण किए हैं, अत्र सर्ग विसर्ग से विसर्ग। तो जीवों का जब निर्माण किए, जितना इंद्रिय में सारे देवताएं बैठे हुए हैं, जैसे आंखों का प्रिजाइडेंटिटीज सूर्य और चंद्र, और क्या, और सारे प्रिजाइडेंटिटीज है, त्वक का, चमड़े का, और नासिकाओं का, जीवा का, वरुण देव, कानों का, ये सारा प्रिजाइडेंटिटी, तालों का, हेड का प्रिजाइडेंटिटीज सब है। ये छठे स्कंद में आते हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो इन सारे इंद्रियों से जितना सुख प्राप्त नहीं होता है, उसी छठे स्कंद में वर्णन है, सेक्स का सुख, स्त्री पुरुष का सुख जो है उसी इंद्रिय से प्राप्त है, क्योंकि ब्रह्मा का वहां निवास है। ये विराट पुरुष के वर्णन में आता है, आप लोग देख सकते हैं, ब्रह्मा विराट पुरुष के वहां पर बैठे हैं भगवान के। तो कहने का अर्थ है कि जहां पर बहुत सुख प्राप्त है, वहां पर इस संसार के सबसे बड़े देव वहां पर निवास है। लेकिन हमारे और सारे इंद्रियों में जो देखता है, बस उसमें इतना ज्यादा सारा सुख प्राप्त नहीं होता है। तो मैं कहना चाहता हूं यहां पर, हमारे मन का स्थिति जो अभी है, जिस मोमेंट में हम लोग एक केमिस्ट्री पैदा करते हैं मन में, आंखों के द्वारा हो, जीवा के द्वारा हो, जिसके इंद्रियों के द्वारा हो, तो अगर वो हमारे स्वरूप के अनुकूल नहीं होता, भक्ति के अनुकूल नहीं होता, अनकॉन्शियसली दिमाग में क्रिएशन हो रहा है, अथवा दिमाग में एक प्रकार का इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है जो हमारे भक्त में घातक हो, तो फिर उसको हम कैसे नष्ट करें? ये हमारे प्रैक्टिकल डिवोशनल लाइफ में घटता है। तो कृष्ण कहते हैं कि यदा संघर्षे चायं कुर्म ज्ञानी सर्वसाह, वो कहते हैं कि कुर्म जो है, कछुआ जो है, अपने अंग को अपने समय पर ही निकाल करके व्यवहार करता है। अगर समय पर उसको निकाल करके व्यवहार नहीं करता है, समय पर निकालता है मतलब कॉन्शियसली वो करता है, जानता है अभी मुझे जरूरत है इसलिए वो निकालता है। जब वो जीव देख लेता है किसी रूप को असुर जैसा, मनाकृष्ट होता है, तो फिर वो अनकॉन्शियसली घटता है, अनकॉन्शियस, राइट? अनकॉन्शियसली हमारे इंद्रिय वहां पर चलते हैं, हमारा इंद्रिय हमारे वश में नहीं, वहां पर चलते हैं। जब हमारे इंद्रिय चलते हैं, हम रथी हैं, आत्मा के रूप में बैठे हुए हैं, हम जा रहे हैं, तो फिर हम वास्तविकता, हमारा पतन होगा, हम लोग फिर फंस सकते हैं, आगे का क्या होगा कुछ पता नहीं चल सकता है। तो फिर वहां पर हम विषयों से अपने इंद्रियों को हटाना है, ये हमारा मुख्य कार्य है। जिससे हम लोगों को कहा जाता है कि कूटम बीजम फलम मुखेण, कूटम बीजम फलम मुखम क्रमेण एव प्रलियते विष्णु भक्ति रतात्मना। विष्णु भक्ति में रत रहना है, क्योंकि कूट बीज और फल एक वास्तविक स्थिति का तीन जो स्तर है वो उत्पन्न हो गया है, कूट बीज और फल, फल उन्मुख स्थिति। तो जब हमारे अंदर इंप्रेशन एंट्री कर रहा है, मन में कुछ पैदा हो रहा है, तो उसी समय अगर हम थोड़ी सी देर में जागृत हो जाते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कंसेप्ट के हिसाब से जागृत करवा दिया। अगर हम ऐसे कहते हैं चलो देख लिया बस, भूल हो गया बस, आपको जरूरत नहीं, ऐसे अगर कह देते हैं, तो फिर जाकर के शायद आगे उसको समाधान नहीं कर सकते, बार बार इंद्रिया हमारा वही दोष करेगी जो पहले कर रही है। अगर वहां पर मैं अपने आप समझे क्यों बना इंद्रिय इतना आकृष्ट हुआ, हमारे अंदर क्या वीकनेसेस है, क्या दुर्बलता है, जिसके कारण हम ये जो मोमेंट को नोटिस नहीं कर सके, अगर हम इतना नहीं करते, थोड़ा सा विचार नहीं करते, विवेक को पैदा नहीं करते, तो फिर आगे हमारा पतन निश्चित है। हमारे पास सबसे अथॉरिटी नहीं रहेंगे, सबसे प्रभुपाद नहीं रहेंगे, सबसे ग्रंथ नहीं रहेगा। अगर मन होगा उतना ही मेमोरी ठीक रहेगा जितना हमारा इंद्रिया सही तरीके से कॉन्शियसली फंक्शन कर रहा है। जैसे हम भगवद गीता का स्मरण कर लेते हैं, कृष्ण गीता में कहते हैं कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, किसका प्रज्ञा प्रतिष्ठित होता है? सबका नहीं, जो धीर है उसका प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, जो ध्याधीर है उसका प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं है। तो धीर कैसे बनेंगे, धीर कैसे बनेंगे? सेंस कंट्रोल, ये तो एक साधारण रूप से है, हम लोग जानते हैं सेंस कंट्रोल। अगर मैंने ऐसा कुछ चीज कह दिया जो रिलेटेड नहीं है कृष्ण चेतना के साथ, आप लोग हंस लिए, भौतिक चेतनाओं के साथ रिलेटेड है, बाहर भागवत क्लास में नहीं हो तो बाहर हो, तो अगर आप हंस लिए, हंसना एक इंद्रियों का स्वभाव है, ये धीर का स्वभाव नहीं। कृष्ण कहते हैं कि लाभ हानि जय पराजय सुख दुख, इन सब में स्वभाव रहना ही धीरता का परिचय है। ये सब इंद्रियों का विषय का लक्षण है। तो जनरली कृष्ण कहते हैं कि सुख हंसना सुख ये जो प्राप्त करना ये सत्वगुण का लक्षण है। जब जब कोई हंसता है तो फिर इसका अर्थ है सत्वगुण का प्रावल्य उसके अंदर है और उसको हजाना नहीं चाहता है, अथवा उसको मिस करना नहीं चाहता है, अथवा उसको नष्ट करना नहीं चाहता है। क्योंकि सत्वगुण है, सत्वगुण का स्वभाव जीवों को सुख में रखना, ज्ञान देना इत्यादि प्रक्रिया है। लेकिन सत्वगुण सूक्ष्म होता है, जो जीवन को ट्रांसेंडेंटल गुण में जाना है, विशुद्ध सत्वगुण में जाना है। अगर सत्वों का सुख ले जाते हैं, हंस लेते हैं अथवा सुख लेते हैं जैसे हो, इंद्रियों के माध्यम से जैसे भी आप सुख करें, जैसे मुंह खोल करके दांत दिखा करके हम हंसे, अथवा नाक आग्रहण करके हंसे, जो पुष्प भगवान को अर्पित नहीं उसी पुष्प का आग्रहण करे, अथवा जो भगवान को पुष्प ऐसे अर्पित किया गया सिंपल तरीके से, लेकिन हम जब आग्रहण करें उसको फाड़ करके आग्रहण करें, क्योंकि मैरीगोल्ड का फूल इतना बाहर से सेंट नहीं आ रहा है, उसको फाड़ करके सुंग रहे। तो इसका अर्थ है कि भगवान के लीलाओं का दर्शन रूप सनातन किए, अभी का वृंदावन में कहे कि अभी भी भगवान कृष्ण का लीला यहां पर चल रहा है, लीला चल रही है, तो फिर इसी पुष्प में आग्रहण है, तभी भक्तों का अनुभव होगा जो दिव्य स्तर पर जाएंगे। विग्रह में भगवान है तभी होगा जब हम दिव्य स्तर पर जाएंगे। चरणामृत जल नहीं है, चरणामृत साक्षात हरि के चरण का उदक है, तभी हमारा स्थिति होगा, अनुभव होगा जब हम दिव्य स्तर पर जाएंगे। पुष्पों को फाड़ करके उसको सुनने की जरूरत नहीं है, अगर यही करेंगे तो फिर हम लोगों का यही शायद घट सकता है कि नहीं, ये मेरीगोल्ड का फूल जो है ये सेंटेड नहीं है, इसके कारण उसको फाड़ना पड़ता है ताकि अंदर से थोड़ा सुगंध आए। चलो भगवान के पुष्प अर्पित पुष्प को हम फाड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे भी उसको ग्रहण कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ही है, जिसके इंद्रियों के माध्यम से हम लोग इंप्रेशंस को कलेक्ट कर रहे हैं, अपने मन में इकट्ठा कर रहे हैं, उस इंद्रियों को अंग को भगवान कर रहे हैं तभी व्यवहार करना है जब इसका आवश्यकता हो, सही डायरेक्शंस में, ताकि इंप्रेशन मन में ठीक रहे। और प्रज्ञा तभी प्रतिष्ठित होता है, नॉलेज तभी, मेमोरी तभी ठीक रहती है। मेमोरी तभी तक ठीक नहीं रह सकता जब हम अपने इंद्रियों का सही तरीके से व्यवहार नहीं करके, कॉन्शियसली व्यवहार नहीं करेंगे। दिस इज हरे कृष्ण मूवमेंट, कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। तो इसी के कारण भगवान को यही द्वितीय अध्याय भगवद गीता में वर्णन करना पड़ा था, 55 श्लोक, 56 श्लोक और 57 श्लोक, 3 श्लोक में, कि प्रज्ञा को कैसे ठीक रखना है, बुद्धि को कैसे, विवेक को कैसे ठीक रखना है, भाव को कैसे ठीक रखना है। आप अगर अपना हाथ खराब हो गया है उसको काट सकते हो, इट कैन बी रिप्लेस्ड वेरी इजीली, परंतु अगर आप का भाव खराब हो गया है, अथवा भाव में गलत अंडरस्टैंडिंग अथवा गलत अनुभव हो गया है, अथवा गलत तरीके से वो गाइड हो गया, तो उसको रिप्लेस करना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर नहीं है। स्थूल शरीर कैन बी रिप्लेसेबल, सूक्ष्म शरीर इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन इंप्रेशन को नष्ट किया जा सकता है, कूट बीज फल उन्मुख जो स्थिति है, इन जैसे पापों का स्थिति है, कर्मों का स्थिति है, प्राणियों का विचार स्थिति है, ठीक वैसे ही ये जो स्थिति है उसको बीज बनने से पहले हम अगर उसको नष्ट कर दे तो फिर इजी रहता है, अगर वो क्रोनिक हो जाता है तो फिर वो बहुत कष्ट होता है। इसी के कारण ज्ञान सिर्फ पर्याप्त नहीं, अब तो विज्ञान बहुत आवश्यक है। ज्ञान हम याद करके फिर भूल जाते हैं। विज्ञान हमारे अंदर संस्कारित, विज्ञान का अर्थ है संस्कारित होना, षोड़विध संस्कार, षोड़श संस्कार, दशविध संस्कार, जो संस्कार होता है वर्णाश्रम में अथवा भक्ति में, जो अन्य संस्कार होते हैं, हरिनाम का संस्कार हो, भागवत कथा श्रवण का संस्कार हो, हमारे ऊपर जो पड़ रहा है ये संस्कार जो पड़ रहा है, ये संस्कार इसलिए पड़ रहा है ताकि हम लोग भक्ति में एक सही दिशा को प्राप्त करें। मन के अंदर इसका संस्कार पड़ता है, भाव के अंदर इसका संस्कार पड़ता है, इसको कहा जाता है विज्ञान। जैसे हम लोग चैंटिंग करते हैं टू आवर्स अगर चैंटिंग करते हैं, 2 घंटा के समय में हम कभी कभी टायर्डनेस का अनुभव करते हैं। कई भक्त होते हैं टायर्डनेस का अनुभव नहीं करते हैं, तो टायर्डनेस का जब अनुभव होता है चैंटिंग के समय पर, तो जहां हम जिस स्थिति में अभी पहुंचे नहीं, जिस स्थिति में हम लोगों को पहुंचना चाहिए, अगर हम उसी स्थिति में पहुंचे हुए हैं जहां पर टायर्डनेस का अनुभव हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को पता चल रहा है कि इंद्रियां अभी थक गया है, इंद्रियां अभी प्रयोग नहीं हो पा रहा है, मशीन अभी काम नहीं कर रहा है, मशीन को थोड़ा आराम की जरूरत है, तभी हम क्या करते हैं, चैंटिंग थोड़ा अच्छा हो इसके कारण थोड़ा आराम कर लेते हैं प्रभु जी, राइट? ठीक है, तो मशीन को थोड़ा आराम दे देते हैं ताकि वो सही दिशा प्राप्त करें। तो ऐसे ही हम लोग गाइड करते हैं इंद्रियों को ताकि वो ठीक से पड़े। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सेंसेस को ज्यादा प्रेशराइज करते हैं अथवा फोर्स करते हैं ताकि स्वभाव, प्रेशराइज का 2 तरीका है, मतलब ज्यादा हम लोग अगर उसको अभ्यास में डालने की प्रयास करते हैं, क्योंकि हम लोगों को कहा गया है कि सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ऋषिकेणा ऋषिकेश सेवा नम भक्ति रुच्यते। अगर मन नहीं लगता है तो फिर उसका भी व्यवहार करना है कि मन को कैसे लगना है। जैसे अगर प्लास्टिक को अगर खींचेंगे तो फिर कहाँ तक खींच सकते हैं, अगर ज्यादा खींचेंगे तो फिर टूट जाएगा, अथवा रबर को ज्यादा खींचेंगे तो फिर टूट जाएगा। तो अगर हमारे इंद्रियों को एक सही दिशा ना मिला, सही तरीके से उसको गाइड नहीं किए, तो फिर क्या होगा ना, अगर ज्यादा उसको ऊपर प्रेशर करेंगे अथवा ज्यादा इसके ऊपर करेंगे तो फिर शायद कहीं गलत दिशा पर जा सकता है, वो अपना कुप्रभाव दिखा सकता है, अथवा विषयों के प्रति आसक्ति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, जिस इंद्रिय जहां तक वो जाने के लिए समर्थ है वहां तक हम इसको लेते हैं। जैसे चैंटिंग करना, हम जीवा को मुझे याद है, मैं जब चैंटिंग कर रहा था 128 माला 128 राउंड्स 64 64 ब्रजमंडल की परिक्रमा कर रहा था, अकेला कर रहा था, तो मुझे टाइम मिला चलते हुए चैंटिंग करना, तो मुझे 16 घंटा लगता था अथवा उससे थोड़ा ज्यादा, मैं चलता था 8 घंटा 9 घंटा तक, उसमें कुछ चैंटिंग हो जाता था फिर। तो ये 128 राउंड्स चैंटिंग करने वाला एक अलग प्रकार का होता है, क्या अनुभव होता है कि हर समय मुझे अनुभव हुआ कि मैं इवन चलते हुए टॉयलेट जाते हुए हर समय जीवा अपने रोटेशन में लगा हुआ है, अपने धंधे में लगा हुआ है, क्या हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण, ये एक्सपीरियंस मुझे है। ये ना कि मैं आपके सामने झूठ बोल रहा हूँ, मुझे अनुभव है। मैं हर अभी 16 माला करने में भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बार क्या था मेरा ये अनुभव है कि अगर ऐसी ही नाम कहा जाए तो फिर बहुत अच्छा है। महाप्रभु भी करते थे, आप लोगों को पता है चैतन्य महाप्रभु, उनके तो जीवा के नोक पर ही हरिनाम रहता है, हर समय करते रहते हैं। तो अगर हम ऐसे ही हरिनाम करते हैं तो फिर लाभ है, क्योंकि जीवा ऑलरेडी हम लोग जीवा के नोक पर जो संचय करना था धन को, वो संचय करके रखे हैं हरिनाम को, और वो हमारे वश में है। मैंने एक भक्त को देखा कीर्तन में बहुत एक्सपर्ट है, हर समय हरिना क्या ना भगवान का कीर्तन करता रहता है, इतना साल का उम्र नहीं, लेकिन बहुत जल्दी भक्त बन गया। और उनके परंपरा, उनके गृह कुल परंपरा से मृदंग बजाना, वैष्णव बनना सब है ट्रेडिशनली। तो जब सो रहा था एक दोपहर में, कीर्तन करते हुए आकर के सो गया, सोते हुए नमो ओम विष्णु पादाय विष्णु पृष्ठाय भूतले, सोते हुए गाता रहता है। मैंने वहां बैठा, मैंने कहा देखो क्या कर रहा है। तो क्या होता है, तो ये क्या है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति च गुण तो बुद्धि प्रत्यया तासम विलक्षण जीव सखित्व विनिश्चित। पिपलायन मुनि निमि महाराज को समझाते हैं कि प्राणी का चार अवस्था है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तूर्य। तूर्य अवस्था में वो भेद नहीं देखता, ब्रह्मगुप्त स्तर है। तो यहां जागृत अवस्था में ही वो भक्त का सुसुप्ति अवस्था है, लेकिन सुसुप्ति अवस्था में इंद्रियां फंक्शन नहीं करते हैं। तो ये कौन सी स्टेट ऑफ माइंड है जहां पर एक भक्त भगवान का प्रणाम मंत्र गा रहा है अथवा प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र गा रहा है, ये गुण के अंदर भी नहीं है। ये कौन सा स्थिति है जीव का? तूर्य अवस्था से ऊपर भी कहा जा सकता है, मन उनका कृष्ण चेतना में है, शरीर सोया है, मन भी सोया है शायद, बस इंद्रिया हैबिटेटेड है, जिसके कारण स्थूल इंद्रिया हरि की सेवा में भी सोते हुए लगते हैं, राइट? स्थूल इंद्रिया भी हरि के सेवा में सोते हुए लगते हैं। जीव अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस नहीं है कि क्या कर रहा है, लेकिन भी कर रहा है कुछ। अनकॉन्शियसली सब गलत करते हैं, अनकॉन्शियसली कोई ठीक नहीं करता। अनकॉन्शियसली तभी वो ठीक कर सकता है जीव, जब वो स्थूल इंद्रियों को बहुत कृष्ण चेतना में लगाया है, स्थूल शरीर को, स्थूल इंद्रियों को, चाहे सूक्ष्म शरीर को मैं बात सुने या न सुने, स्थूल शरीर को बहुत कृष्ण चेतना में लगाया है, तभी क्या होगा ना, अनकॉन्शियसली जीव सारे काम कृष्ण चेतना में ही करेगा और उससे उसका उद्धार हो सकता है, उद्धार हो सकता है। जैसे नारायण नारायण कहकर के अनकॉन्शियसली उनका नारायण का नाम ले लिया, लेते हुए उनको अवसर मिला कि अभी जाओ साधना करो, अपने सूक्ष्म इंद्रियों को सही करो, किसको, अजामिल को, फिर जाकर कभी कुंठ से विमान आया। दोनों ही क्रियाएं हुआ, सूक्ष्म और स्थूल दोनों क्रिया। तो ठीक वैसे ही अगर हम लोगों का मन इंद्रिय बुद्धि इंद्रिय मन प्राणम धनानम आश्रित प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च, ये जो शरीर का निर्माण हुआ है अपने सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ यहाँ पर वर्णन हो रहा है, ये तीन विशेष प्रयोजन के लिए बनाया गया, एक मात्रार्थम, एक भवार्थम, एक आत्मने अकल्पनाय, तीन प्रयोजन के लिए इसको बनाया गया है। शास्त्र ही कहता है, भगवत का दसवीं स्कंद 87 अध्याय में यही वर्णन है, श्रुति सारी उनका जब वर्णन आता है। तो हम लोग की इंद्रियां जो हरि की सेवा में लगे हैं तो फिर वो कैसे लगेंगे? तो दो ही तरीके से, अगर मन को सजाए तो फिर इंद्रिया ऑटोमेटिकली फंक्शन हो जाएंगे, कॉन्शियसली करेंगे तो फिर कोई जरूरत नहीं करेंगे इंद्रिया, अनकॉन्शियसली करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो अनकॉन्शियस हो उसको कहा जाता है कि सोते हुए भी चलते हुए भी तुमको चैंटिंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कम से कम तो इंद्रिया क्या है, इंद्रिया क्या है, वो मतलब सर्प के भांति आप लोगों को पता है। अब उनके माध्यम से हम लोग कितना कृष्ण भक्ति का धन को संचय कर सकते हैं। जीव का जो सोफिस्टिकेटेड इंग्रेडिएंट है अपने शरीर के अंदर, वही मन। अब रूपा जी कहते हैं इट इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द ह्यूमन बींग, राइट? माइंड इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द ह्यूमन। अगर आप मन के साथ मित्रता कर ले तो फिर वहां से आप बहुत सोर्स मिल सकता है धन इकट्ठा करने का। मन अगर लग गया तो फिर जैसे हम लोग कई परसेंटेज डेवलप हो सकते हैं ह्यूमन बींग के अंदर। मनुष्य 48% है ना, कितना परसेंट है? जैसे विष्णु तत्व, जीव तत्व, शिव तत्व, ब्रह्म तत्व, इसे परसेंटेज में डाला गया है? यस, 75%। किसका? और भगवान विष्णु का, विष्णु तत्व का। हाँ तो बस आप लोग सही कह रहे हो, मेरा याद नहीं, मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को जितना विकसित होना है उतना विकसित करने के लिए हम लोगों को जो प्रयास करना है वो आवश्यक है, अपने मन बुद्धि और भाव इंद्रिया होल सिस्टम को यूज करके। अगर हम सिर्फ स्थूल इंद्रियों को सजाने के प्रयास करें तो फिर इनका स्वभाव है जब थोड़ा सा भी उनको मिलेगा श्रोत्र तो फिर ये फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि उनका स्वभाव वही है। इसलिए हम लोग उसके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करते। और मन मन क्या है, सुबह उठे उठ करके कहने लगे कि आज नींद अच्छा हुआ, बस नींद अच्छा हुआ जब कह दिए तो फिर मन के अंदर इसका इंप्रेशन रहो, कल नींद अच्छा नहीं हुआ, नींद पूरी नहीं हुई तो उसके साथ क्या हो, मन के अंदर वही इंप्रेशन रहा, अच्छा और बुरा का इंप्रेशन मन के अंदर रह गया, राइट। मन के अंदर अच्छा और बुरा का इंप्रेशन रह गया। तो ये जो अच्छा और बुरा का भाव है हमारे अंदर इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग प्रति मोमेंट में, उससे ऊपर उठ करके हम लोग थोड़ा कृष्ण चेतना में मन लगाए, अच्छा बुरा सिर्फ कृष्ण के लिए ही कहे, कृष्ण का विग्रह बहुत अच्छा है, थोड़ा कृष्ण का ड्रेसिंग आज अच्छा हुआ है, मेरा सेवा आज ठीक से नहीं हो पाया, मुझे ठीक से सेवा करना है, इत्यादि इत्यादि क्रियाओं में अगर व्यस्त रहेंगे तो फिर अच्छा और बुरा का मनोभाव जो होगा वो नहीं रहेगा, तो उससे हम लोग ऊपर उठ सकते हैं। तो यहां पर हम लोग जो स्थिति हमारी देख रहे हैं उससे ऊपर उठने के लिए अगर हम लोग एक हद तक प्रयास करें कि अपने बुद्धि और मन को ठीक रखें तो फिर जरूर हम लोग इससे ऊपर उठ सकते हैं। बुद्धि और इंद्रियां, बुद्धि और मन तभी ठीक हो सकते हैं जब आप लोग जानते हैं कि हम लोग चीज अच्छा खाते हैं, लेकिन अच्छा खाने से इंद्रियों को स्पिरिचुअल चीज नहीं मिलता है, लेकिन अच्छी खाना क्या है ना, भगवत गीता का जो प्रिंसिपल द्वितीय अध्याय में वर्णन है उसका सारा वर्णन करने से अथवा पालन करने से जो चीज हमको प्राप्त होता है उससे ज्यादा लाभ होता है, उसका अभ्यास हम लोगों को करना चाहिए हर मोमेंट में जो घट रहा है, उससे लाभ ज्यादा होता है, उसके उसके बाद ही हम लोग एक सही डायरेक्शन प्राप्त करते हैं, जिस सही डायरेक्शन के माध्यम से हम लोग भगवती भक्ति के एक अच्छा दिशा दे सकते हैं। तो इसी के कारण प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसी प्रश्न के संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कह रहे हैं कि असुर गण का जो समझना उनके स्वभाव के आधार पर है वो आधार पर यहाँ पर नहीं होना चाहिए हम लोगों का। एक बार असुर गण का स्वभाव हुआ था जब उपरिचर वसु भगवान के भजन में तत्पर थे, उपरिचर वसु देवताओं के साथ युद्ध करके असुरों के ऊपर विजय प्राप्त किए थे, इसके कारण क्या हुआ ना, उपरिचर वसु के शत्रुता बन गए कौन ना, सारे असुर, असुर शत्रुता बन करके उपरिचर वसु को मारने के लिए प्रयास किए, जैसे असुर ने प्रह्लाद को मारने के लिए प्रयास किए थे। तो उपरिचर वसु वहां पर क्या किए ना, पातल लोग जाकर के भजन करते थे तभी असुरों ने जाकर के उनको मारने के प्रयास किए, जब मारने के प्रयास किए तभी उपरिचर वसु के ऊपर उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, तो फिर असुर आकर के शुक्राचार्य को कहने लगे कि हमने उसको मारने की बहुत प्रयास किया लेकिन वो मरे नहीं, आप कृपा करके बताए कि इसको कैसे हम मारे। तो फिर शुक्राचार्य तो बहुत निपुण थे ज्ञान में, इसके कारण उन्होंने कह दिया कि आप जाकर के पाषाण धर्म का प्रचार करो, पाताल लोक धर्म का कुप्रचार हो तो फिर जरूर वो जागृत होंगे समाधि से। तभी जाकर के असुर लोग में पाषाण धर्म का प्रचार किया, जब प्रचार किया तभी उपरिचर वसु जागृत हुए, हाय है मुझे मारने के लिए ये लोग पाषाण धर्म का प्रचार कर रहे हैं हर जगह पे, तभी चेतना में जागृत हुआ, तभी उपचर वसु ने भगवान से प्रार्थना किए थे कि हे प्रभु इन असुरों का कैसे उद्धार हो, इन असुरों का कैसे उद्धार हो, कृपा करके इन सारे असुरों का उद्धार कर दीजिए। तभी उपरिचर वसु के प्रार्थना में और उनके अभ्यास में इतना बल था, भगवान तत्क्षणात उन सारे असुरों का उद्धार कर देते, वैकुंठ ले गए थे। ये सब वेरी यूनिक चीज वैदिक जीवन काल में घटा है कि किसी के प्रार्थना में किसी को पूरा बेनिफिटेड मिला है, तो असुर लोगों को पूरा बेनिफिटेड मिल गया। असुरों का स्वभाव सदैव एक ही रहता है, कभी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, असुर स्वभाव हमारे ऊपर ना पड़े इसके कारण कुसंग नहीं करते हैं। योगस्थ कुरुकर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समभूता समत्वम योग उच्यते। हम योग करते हैं, कर्म करते हैं कुसंग को त्याग करके, सिद्धि असिद्धि के समभाव रह करके संग करते हैं, फिर जाकर के उसको योग कहा जाता है, नहीं तो फिर योग से कथित हो जाते हैं, फिर योगाभ्रष्ट हो जाते हैं। फिर योगाभ्रष्ट जब होता है तो फिर हमारा भजन का कुछ मीनिंग ही नहीं, एक अवसर मिल रहा है लेकिन फिर भी अवसर से विच्युत हो रहा है। तो यही इसी अध्याय में इसी श्लोक में मैंने थोड़ा कैसे मन को ठीक करा था, मन का स्थिति कैसा है, इसका हम लोग थोड़ा जानने की समर्थ यहाँ पर प्राप्त किए। इससे हम लोग कैसे उभर सकते हैं, आप लोग खुद अपने आप में देख सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, हम लोग प्रयास कर सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा श्री लोकनाथ गोस्वामी के चरित्र 5 मिनट्स के अंदर पढ़ने की प्रयास करेंगे, क्योंकि आज उनका तिरोभाव का स्थिति है, थोड़ा मैं लेट किया। और लोकनाथ गोस्वामी जो है श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के सबसे श्रेष्ठ प्रिय भक्त है। लोकनाथ गोस्वामी एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, मैं कह देता हूँ, और भूगर्भ गोस्वामी के साथ वो वृंदावन में पहले आए थे। पहले हम जानते कि वृंदावन भूगर्भ गोस्वामी आए थे। लोकनाथ गोस्वामी को भी रूप सनातन से पहले कौन भेजे थे, श्री चैतन्य महाप्रभु भेजे थे किसको, लोकनाथ गोस्वामी को वृंदावन को। तो लोकनाथ गोस्वामी के पिताजी का नाम था पद्मनाभ, और लोकनाथ गोस्वामी के पास श्री विग्रह था। एक बार लोकनाथ गोस्वामी इस ब्रजभूमि में निवास करते थे, एक किशोरी कुंड नाम का एक कुंड था, तो इसी कुंड में वे निकट ये निवास करते थे। उनके मन में इच्छा हो कि श्री कृष्ण का विग्रहों का सेवा करो, तो भगवान कृष्ण आकर के उनका राधा विनोद का विग्रह दे दिए। तो राधा विनोद के विग्रह प्राप्त करके तुरंत भगवान कृष्ण वहां से अप्रकट हो गए। तो फिर उसी समय लोकनाथ गोस्वामी सोचने लगे कि भगवान कृष्ण साक्षात बन करके आकर के मुझे विग्रह दिए और इसी विग्रहों को सेवा करने के लिए मुझे कहे। तो लोकनाथ गोस्वामी इतना वैराग्य थे कि अपने ही गले में श्री विग्रहों को लेकर के इधर उधर भटकते थे। ब्रजवासी लोग कहते थे कि बाबा आपके लिए हम कुटिया बना देते हैं, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी के लिए कुटिया बनाने के लिए ब्रजवासी लोग जब कहे तो फिर लोकनाथ गोस्वामी फिर भी मना कि नहीं नहीं मुझे कुटिया की जरूरत नहीं, मैं पेड़ के नीचे ठीक हूँ। जब कभी भी डीटीओ का इंस्टॉलेशन जहाँ पर रखना व्यवस्थित करके होता था, तभी वो वहाँ पर क्या करते थे ना, एक अपने ही कपड़े से बनाया गया एक छोटा सा अल्टर बना देते थे, वहां पर राधा विनोद के विग्रहों को रख करके वो सेवा करते थे। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य भागवत का चैतन्य चरितामृत का रचना किए, तो लोकनाथ गोस्वामी उनको मना किए थे कि मेरे बारे में कुछ नहीं लिखना है। उनको लोकनाथ गोस्वामी कभी शिष्य ग्रहण करने के लिए प्रयास नहीं करते थे, उन्होंने कभी भी प्रयास नहीं किया। उनका एक ही शिष्य है, कौन है, नरोत्तम दास ठाकुर। और हम लोग हर दिन गुरु वंदना में वही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लोकनाथ लोकेर जीवन। तो लोकनाथ गोस्वामी का यही कंट्रीब्यूशन से है। नरोत्तम दास ठाकुर जितना गौरांग महाप्रभु के ऊपर भजन लिखे हैं, श्री लोकनाथ गोस्वामी के कृपा आधार पर। लोकनाथ कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट महाप्रभु वुड रिनाउंस। एक बार क्या हुआ, लोकनाथ गोस्वामी जब महाप्रभु से मिलने गए थे, तभी महाप्रभु गृहस्थाश्रम में थे, तभी संन्यास नहीं ले थे, कुछ दिन के बाद संन्यास लेने वाले थे। तो लोकनाथ गोस्वामी उनको देख करके लोकनाथ गोस्वामी के मन में दुख उत्पन्न हुआ। महाप्रभु तुरंत लोकनाथ गोस्वामी तुरंत रोने गए, रोने लगे कि हाँ महाप्रभु कितना सुंदर लग रहे हैं उनके हेयर, उनके केस को देख करके, हैं अभी संन्यास लेंगे, जैसे मार होती है ना कि मेरा बट्टा वो मुंडन हो जाएगा, हैं उनके केस को देख करके, उनके शरीर के सौंदर्य को देख करके कहे हाँ इतने सुंदर रूप, अगर संन्यास लेंगे कई सारे कष्टों को उठाना पड़ेगा, तो ये महाप्रभु भी संन्यास ले जाएंगे, कितना वैराग्य का आचरण करना पड़ेगा, ये सारा चीज सोच करके महाप्रभु के प्रेम में श्री लोकनाथ गोस्वामी बहुत रोए थे। महाप्रभु देख करके लोकनाथ गोस्वामी के ऊपर कृपा किए, लोकनाथ गोस्वामी के ऊपर कृपा करके उनको कहाँ भेजे, कहे कि लोकनाथ अभी तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन जा करके वहां पर निवास करो, लोकनाथ गोस्वामी को कहने लगे। तो लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन चले गए। तो जब महाप्रभु संन्यास लिए फिर गए जगन्नाथपुरी, नाचल होकर के फिर वृंदावन आए, तभी ढूंढने लगे, तभी लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु से मिले। ब्रजभूमि में इधर उधर भटकते हुए चैतन्य महाप्रभु जब ब्रजभूमि की परिक्रमा किए, तो फिर लोकनाथ गोस्वामी थोड़ा अलग रास्ते से चले गए। तो लोकनाथ गोस्वामी सोच रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जरूर आएंगे वृंदावन, फिर मेरे उनके साथ भेंट होगी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु वहां से फिर प्रयाग चले गए। प्रयाग चले गए, जब लोकनाथ गोस्वामी को खबर हुआ कि चैतन्य महाप्रभु प्रयाग चले गए, बहुत दुखित होकर के रहे, विरह के भाव में वहां पर अपने प्राण त्यागने के लिए प्रयास किए, लेकिन भूगर्भ गोस्वामी उनको समझाए नहीं, महाप्रभु की इच्छा है कि आपको यहाँ वृंदावन में रहना है। तो लोकनाथ गोस्वामी का वर्णन श्री जीव गोस्वामी अपने वैष्णव तोषण में थोड़ा सा करते हैं, बस एक थोड़ा सा एक ये लिख करके मंगलाचरण श्लोक में, आई वर्शिप श्रीमत काशीश्वर लोकनाथ एंड श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी हु हैव टेकन शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ श्री गोविंदा। लोकनाथ गोस्वामी के प्रिय डिटी यद्यपि श्री राधा विनोद थे, लेकिन फिर भी श्री गोविंद के चरण में उनका शरणागत बहुत था। हु आर वेरी डियर टू श्री वृंदावन, यही कौन न जीव गोस्वामी अपने मंगलाचरण श्लोक में जब भागवत का लिखते हैं तभी वर्णन करते हैं लोकनाथ गोस्वामी के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोकनाथ गोस्वामी वाज हिमसेल्फ, लोकनाथ गोस्वामी बहुत अपने जीवन में भक्तियों आनंद का अनुभव किए, ऐसा कहा जाता है। वह लोकनाथ गोस्वामी नाम हरिनाम जब करते थे उस हरिनाम के साथ आविष्ट हो जाते थे, जैसे श्री हरिदास ठाकुर। लोकनाथ गोस्वामी जब राधा विनोद के लिए प्राप्त किए, तभी लोकनाथ गोस्वामी राधा विनोद खुद उनको कहने लगे, मुझे तो अब तुमने प्राप्त कर लिया है, अभी मुझे क्या खिलाओगे। तो लोकनाथ गोस्वामी के पास वास्तविक संन्यास के हिसाब से कुछ था ही नहीं। तो लोकनाथ गोस्वामी ब्रजवासियों के पास गए, जा करके थोड़ा सा माधुकरी करके इधर उधर से ला करके इकट्ठा किए और इनको अर्पित किए। किनको? ना राधा विनोद को। तो राधा विनोद उसी प्रसाद को खाए। तो लोकनाथ गोस्वामी का जो राग भाव है श्री राधा विनोद की सेवा में, वो थोड़ा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम लोग मानसिक शयन दे देते हैं विग्रहों को खड़े होते हुए, तो लोकनाथ गोस्वामी जो विग्रह प्राप्त हुआ था, लोकनाथ गोस्वामी पुष्प का एक सैया बना करके विग्रहों को पूरा सुला देते थे, पूरा खुल करके सुला देते थे, खड़े नहीं रखते थे राधा विनोद के विग्रह को, सुला करके अपने ही उत्तरियों में वो खुद उसका पंखा करते थे, क्योंकि उनके पास सब कुछ पैसा नहीं था धन की संग्रह करके, और कभी कभी पत्ते से भी पंखा करते थे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पत्रम पुष्पम परम थे, पंखे से पंखा करते थे, पत्र से भी पंखा करते थे। और भगवान कृष्ण का मसाज कैसे करते थे, मन में ध्यान करते हुए उनका मसाज। तो ऐसे ही लोकनाथ गोस्वामी भगवान का सेवा किए। लोकनाथ गोस्वामी आप लोगों को बताया कि कभी उन्होंने शिष्य नहीं किए, और क्यों? प्रश्न उठता है क्यों शिष्य नहीं किए, क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी में मन था कि अगर मैं शिष्या करो तो मेरा डिवोशनल सर्विस जो है उसके अंदर दरार पड़ सकता है, भक्तियों की सेवा है सेवा में दरार पड़ सकता है, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाऊंगा, इसके कारण उन्होंने मना किया। तो ओनली केवल नरोत्तम दास ठाकुर को उन्होंने शिष्य के रूप में ग्रहण किया। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब द केयर विथ व्हिच नरोत्तम ठाकुर सर्व इज्जत। नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा देने के लिए उन्होंने कई बार मना किए, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी का सेवा बहुत की, मेनियल सर्विस बहुत करते थे, इतना सेवा किए कि लोकनाथ गोस्वामी का इच्छा न होते हुए नरोत्तम दास ठाकुर को उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार किए थे, और नरोत्तम दास ठाकुर को उन्होंने शिष्य के रूप में स्वीकार किए थे, शिष्य के रूप में शिष्य किए थे। और नरोत्तम दास ठाकुर अपने ही गुरु के लिए मंत्र खुद बनाए थे। लोकनाथ गोस्वामी हैविंग बिकम क्वाइट एडवांस इन ईयर्स एंटर्ड इन द इटर्नल पास्ट टाइम्स ऑफ रिजाइडिंग खदीरबल, वहाँ खदीरबल में रहते थे लोकनाथ गोस्वामी, खदीरबल में रहते हुए वो अपने नित्य लीला में प्रवेश किए। उनका नित्य लीला में वो कौन थे, लीला मंजरी, लोकनाथ गोस्वामी नित्य लीला में वो भगवान कृष्ण के पार्षद थे जिनका नाम था लीला मंजरी। थैंक यू सो मच, अभी समय से बाहर में हूँ, क्षमा कीजिए थोड़ा सा लेट हुआ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी प्रभु की जय, दाय गौर प्रमाण। अगर किसका कोई प्रश्न है अथवा कमेंट है मुझे पर्सनल कर सकते हैं।